दोनों भाइयों को पैदल भागते देखकर जरासंध बहुत हंसा। अब वो हंस रहा है, लेकिन भगवान फिर भी उसकी हंसी को भी सहन कर रहे हैं कि हंस ले तू, जितना हंसना हंस ले। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने जरासंध की सेना को देखकर भयभीत होना स्वीकार कर लिया, जबकि वे केवल अपनी भौहों के सहारे से ही संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। कृष्ण बिना प्रयास के ही अपनी भौहों के सहारे से ही पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं कृष्ण। अब श्लोक की अंतिम दो पंक्तियों में अर्जुन कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर वे जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। इस बात से पता चलता है कि अर्जुन यहां पर धृतराष्ट्र के विषय में विचार कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा ते वस्ता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, धृतराष्ट्र के विषय में विचार कर रहे हैं अर्जुन। क्या अर्जुन की धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत सम्मान की भावना है। पांडु के बड़े भाई होने के कारण धृतराष्ट्र अर्जुन के पिता के समान हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की मृत्यु होने से धृतराष्ट्र का जीवन शोक पूर्ण हो जाएगा। यद्यपि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के साथ पांडवों को मार डालने के लिए अनेक उपाय किए हैं, परंतु फिर भी अर्जुन की धृतराष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना है। ये भी अर्जुन का देखो कितना बड़ा गुण है। महाभारत के युद्ध में जब धृतराष्ट्र के मंत्री और पुत्र सभी मारे गए तथा पांडवों को अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त हो गया, उस समय अर्जुन अपने भाइयों सहित धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत सम्मान का व्यवहार करते थे। इस संबंध में हम महाभारत की कुछ घटनाओं का वर्णन करेंगे। पांचों पांडव राज्य पाने के अनंतर राजा धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर 15 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य शासन करते रहे। कितने साल तक किया? 15 साल तक धृतराष्ट्र को ही आगे रख करके। पांडव प्रतिदिन जब धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करते थे तो धृतराष्ट्र स्नेह बस पांडवों का मस्तक सूंघकर उन्हें जाने की आज्ञा देते थे। धृतराष्ट्र को भी बहुत प्रसन्नता होती थी। राजा युधिष्ठिर बहुमूल्य सैया, वस्त्र, आभूषण तथा राजा के उपभोग में आने योग्य सब प्रकार के उत्तम पदार्थ एवं अनेकानेक भक्ष्य भोज्य पदार्थ धृतराष्ट्र को अर्पण किया करते थे। महातेजस्वी युधिष्ठिर बिहार और यात्रा के अवसरों पर राजा धृतराष्ट्र को समस्त मनोवांछित वस्तुओं की सुविधा देते थे। पांडवगण ऐसा बर्ताव करते थे जिससे अपने पुत्रों से बिछड़े हुए राजा धृतराष्ट्र को किंचन मात्र भी दुख ना प्राप्त हो। उन्हें सदा इस बात की चिंता बनी रहती थी कि पुत्र पौत्रों के वध से पीड़ित हुए बूढ़े राजा धृतराष्ट्र हमारी ओर से शोक पाकर कहीं अपने प्राण ना त्याग दें। पांडवों को ये चिंता रहती थी ना? अपने पुत्रों की जीवित अवस्था में धृतराष्ट्र को जितने सुख और भोग प्राप्त थे वे अभी उन्हें मिलते रहे, इसके लिए पांडवों ने पूरी व्यवस्था की थी। धृतराष्ट्र भी उन सबको परम विनीत, अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले और शिष्य भाव से सेवा में संलग्न जानकर पिता की भांति उनसे स्नेह करते थे। उनके उस बर्ताव से राजा धृतराष्ट्र सदा प्रसन्न रहते और अपने उस मंद बुद्धि दुर्योधन को याद करके पछताया करते थे। क्या धृतराष्ट्र क्या सोचते थे दुर्योधन को के बारे में? क्या सोचते थे? मंद बुद्धि कि अगर इनके साथ में मित्रता करता तो कितना सुखी रहता, कितना मूर्ख था, इनसे लड़ाई करके मर गया। अगर इनके साथ में दोस्ती करता तो कितना सुखी होता दुर्योधन भी। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि हमने इनको सब प्रकार से संकट दिए लेकिन तो भी ये हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, है ना? राजा धृतराष्ट्र को पांडवों के बर्ताव से जितनी प्रसन्नता होती थी उतनी उत्कृष्ट प्रीति उन्हें अपने पुत्रों से कभी प्राप्त नहीं हुई थी। उनके पुत्रों ने भी इतनी सेवा नहीं की। इस प्रकार 15 वर्ष बीतने पर धृतराष्ट्र की वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा हुई तो उन्होंने सभी को बुलाकर कहा, आप लोगों को यह मालूम ही है कि कौरव वंश का विनाश किस प्रकार हुआ है। सब लोग इस बात को जानते हैं कि मेरे ही अपराध से सारा अनर्थ हुआ है। दुर्योधन की बुद्धि में दुष्टता भरी थी तो भी मुझ मूर्ख ने उसे राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, मैंने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की अर्थ भरी बातें नहीं सुनी। विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, महात्मा व्यास, संजय और गांधारी देवी ने भी मुझे पग पग पर उचित सलाह दी, किंतु मैंने किसी की बात नहीं मानी। ये भूल मुझे सदा संताप देती रहती है। ये पांचों पांडव गुणवान हैं, तथापि उनके बाप दादों की यह संपत्ति भी मैंने उन्हें नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही परम कल्याणकारी माना कि मैं पांडवों का राज उन्हें लौटा दूं, परंतु मैंने वैसा नहीं किया। इस तरह की हजारों भूलें मेरे हृदय में कांटों के समान कसक रही हैं। अब मैं इस पाप की शुद्धि के लिए गांधारी देवी के साथ वन में तप करना चाहता हूं। धृतराष्ट्र की इस बात से युधिष्ठिर आदि पांडव अत्यंत दुखी थे। तब व्यास जी उस स्थान पर आए तथा पांडवों को समझाते हुए बोले, महाबाहु भरत नंदन, राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए हैं और अंतिम अवस्था में स्थित हैं, अतः तुम इन्हें वन में जाने की अनुमति दो, क्योंकि अब इनके तप करने का समय आया है। इस प्रकार युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति मिलने पर धृतराष्ट्र ने अपने महल में नगर के वासियों को बुलाकर कहा, सज्जनों, युधिष्ठिर के राज्य में मुझे बड़ा सुख मिला है। मैं समझता हूं कि दुर्योधन के राज्य से भी बढ़कर सुख मुझे प्राप्त हुआ। एक तो मैं जन्म का अंधा हूं, दूसरे बूढ़ा हो गया हूं, तीसरे मेरे सभी पुत्र मारे गए हैं, इसलिए अब आप लोग मुझे वन में जाने की अनुमति दें। मैं इन राजा युधिष्ठिर को धरोहर के रूप में आप सब लोगों के हाथ सौंप रहा हूं और आप लोगों को भी इन वीर नरेश के हाथ में धरोहर की भांति दे रहा हूं। कितना अच्छा बोला, इनको सौंप रहा हूं तुम्हारे हाथ में और तुमको सौंप रहा हूं इनके हाथ में। प्रजाजनों से इस प्रकार कहकर तथा उनकी सद्भावना प्राप्त कर धृतराष्ट्र ने वनवास की दीक्षा ले ली। नहीं तो लोग ये भी सोचते कि पांडवों के द्वारा दुख पाकर के धृतराष्ट्र चले गए जंगल में। ये धृतराष्ट्र जो है ना, सब बात स्पष्ट कर दी कि मैं दुखी होकर के नहीं जा रहा हूं, बहुत प्रसन्न होकर के जा रहा हूं वन में। इसके बाद उनकी इच्छा थी कि भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, बहालिक और युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों का श्राद्ध करें। इसके लिए कुछ धन लेने के लिए जब उन्होंने विदुर जी को युधिष्ठिर के महल में भेजा तो भीमसेन ने दुर्योधन के अत्याचारों का स्मरण करते हुए जब धन देने से इनकार कर दिया तो अर्जुन ने भीमसेन से कहा, भीमसेन को बहुत नाराजी थी धृतराष्ट्र से। अर्जुन ने भीमसेन से कहा, भाई, राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ तथा वृद्ध पुरुष हैं। इस समय वे वनवास की दीक्षा ले चुके हैं और जाने के पहले वे भीष्म आदि समस्त सुहृदों का श्राद्ध करना चाहते हैं, अतः आपको इस कार्य में धन देने की स्वीकृति दे देनी चाहिए। सौभाग्य की बात है कि आज राजा धृतराष्ट्र हम लोगों से धन की याचना करते हैं। समय का उलट फेर दो देखिए, पहले हम लोग जिनसे याचना करते थे वही आज हमसे याचना करते हैं। महाबाहो, उनकी याचना ठुकरा देने से बढ़कर हमारे लिए और कोई कलंक की बात ना होगी। कौन कह रहा है? अर्जुन किससे कह रहे हैं? भीमसेन से कह रहे हैं। उन्हें धन ना देने से हमें बहुत बड़ा अधर्म लगेगा। ऐसी बातें कहते हुए अर्जुन कि युधिष्ठिर ने बहुत प्रसन्नता की, युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए अर्जुन ने ऐसी बात कही तो। परंतु भीमसेन ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, तुम वह पुराना बैर, वो 12 वर्षों का वनवास और द्रौपदी के शोक को बढ़ाने वाला एक वर्ष का गहन अज्ञातवास कैसे भूल गए? भीमसेन कहते हैं, उन दोनों धृतराष्ट्र का हमारे प्रति स्नेह कहां चला गया था जब तुम सब लोग 13 वर्षों तक वन में जंगली फलमूल खाकर किसी तरह जी रहे थे। उन दिनों ये ताऊजी पिता के भाव से तुम्हारी ओर नहीं देखते थे। पार्थ, क्या तुम उस बात को भूल गए जब ये दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र जुआ आरंभ कराकर विदुर जी से बार बार पूछता था, इस दांव में हम लोगों ने क्या जीता है, इसी ने जुआ कराया, जुआ खिलवाया। भीमसेन की इस बात पर अर्जुन ने उत्तर दिया, तात आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः आपके सामने मैं इसके सिवा और क्या कह सकता हूं कि राजर्षि धृतराष्ट्र सर्वदा सर्वथा आदर के योग्य हैं। अर्जुन ने कहा कि और तो मैं कुछ नहीं जवाब दे पाऊंगा, इनका आदर सम्मान करना चाहिए, अर्जुन ने कहा। इसके बाद विदुर जी ने धृतराष्ट्र के पास जाकर संदेश दिया, महातेजस्वी अर्जुन आपको अपना संपूर्ण घर सौंपते हैं, उनके घर में जो कुछ धन है उसे और अपने प्राणों को भी वे आपके सेवा में समर्पित करने को तैयार हैं। कौन? विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हाँ, अर्जुन के बारे में कह रहे हैं, आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य प्राण धन और जो कुछ उनके पास है सब आपको देने के लिए, सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हैं। परंतु भीमसेन ने पहले के समस्त क्लेशों का स्मरण करके लंबी सांस खींचते हुए बड़ी कठिनाई से धन देने की अनुमति दी है। भीमसेन, धर्मशील राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने भी भीमसेन को समझाकर उनके हृदय में भी आपके प्रति सद्भावना उत्पन्न कर दी है। युधिष्ठिर अर्जुन दोनों ने मिलकर के भीमसेन को समझा दिया है। भीमसेन के कटु बर्ताव के लिए युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों आपसे बार बार क्षमा याचना करते हैं, आप जितना धन दान करना चाहें करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां अर्जुन के अंदर त्याग और सहानुभूति की भावना प्रकट हो रही है। उनका त्याग ये है कि उनके अंदर विजय प्राप्त करने की समर्थ होते हुए भी वे जानबूझकर पराजित होना चाहते हैं, तथा सहानुभूति ये है कि वे धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके धृतराष्ट्र को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। परंतु इस प्रकार के त्याग की भगवान प्रशंसा नहीं करते हैं। क्या समझे? हम लोग तो सोचते हैं भाई बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन भगवान प्रशंसा नहीं करते अर्जुन के इन विचारों की। गीता के 18वें अध्याय की श्लोक संख्या 7, 8 और 9 में वे कहते हैं, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करनी मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक माना जाता है। गीता के उपदेश के अंत में अर्जुन ने समझा कि जब तक त्याग और सहानुभूति के केंद्र श्री कृष्ण नहीं होते तब तक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से ही बंधा रहता है। अतः दिव्य स्तर पर कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि श्री कृष्ण के प्रति ही अपनी त्याग और सहानुभूति की भावनाएं केंद्रित की जाएं। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये मैंने लेख पढ़ के सुनाया है। अब किसी का कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? इनका प्रश्न है कि इंद्र जैसे ईर्ष्या कर रहा है पृथ्वी महाराज से कि उनके स्वयज्ञ पूरे ना हो, और इसलिए वो घोड़े को चुरा रहा है, विघ्न डाल रहा है। तो अगर कोई बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो भी इसी प्रकार से करते हैं, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं और इस प्रकार से चाल चलते हैं, तरह तरह की गंदी चालें चलते हैं, तो फिर उनको हम क्यों गलत कहते हैं जबकि शास्त्र में ये बातें सब लिखी हुई हैं? हाँ, लेकिन इसमें एक बात समझना चाहिए कि इंद्र जो चालें चल रहे हैं तो वो इतनी ज्यादा गलत नहीं है। जो चालें आजकल के लोग चलते हैं तो क्या करते हैं, किसी को मरवा डालते हैं। इंद्र तो घोड़े को चुरा रहा था किसी प्रकार से यज्ञ पूरा ना हो, आप समझे ना? तो इतना ज्यादा अपराध तो नहीं था, हालांकि अपराध था, इंद्र का इतना ज्यादा अपराध नहीं था। किसी प्रकार से वो घोड़े को चुरा रहे थे, है ना, कि बस कम से कम ये ना हो, है ना। लेकिन आजकल तो क्या होता है, राजनीति में क्या होता है, जान से मरवा डालते हैं, है कि नहीं। तो इंदिरा गांधी को जान से मरना पड़ा, राजीव गांधी को जान से मरना पड़ा, है ना। तो केवल इतनी नहीं है कि भाई किसी का पैर खींचे वो, बहुत ज्यादा ये सब चीजें हैं। हालांकि इंद्र का ये अपराध तो था और इस प्रकार से इनको कर्मबंधन भोगना पड़ता है। अगर शास्त्र में बताया गया कि भाई इंद्र ऐसा कर रहा है तो साथ साथ ये भी बताया जाता है कि फिर इसका कर्मफल भी उसने भोगा, है कि नहीं। तो इंद्र के जो चरित्र हैं कोई ऐसे नहीं है कि वो जो है आदर्श चरित्र हो किसी का। इसके अलावा ये भी एक कारण है कि इंद्र को भोग ऐश्वर्य इतना ज्यादा प्राप्त है, भोग ऐश्वर्य इतना ज्यादा प्राप्त है कि कोई व्यक्ति जो है ना इससे बिगड़ सकता है। इस भौतिक संसार में ऐसी स्थिति किसी की नहीं है। इस भौतिक संसार में कोई बड़े से बड़ा जो धनी व्यक्ति है उसके भी जीवन में कई कई प्रकार के दुख मिलते रहते हैं, है ना। लेकिन वहां स्वर्ग में इंद्र को जो है इतने भोग ऐश्वर्य प्राप्त हैं और कोई बाधा भी नहीं है। इस भौतिक संसार में नहीं हो सकता ऐसा, आप समझे ना। तो अगर उसको इस बात का घमंड हो और जो है उसका ज्ञान ढक जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो इसलिए इंद्र के कई जो है ना कार्य हैं जिनको कि भगवान क्षमा करते रहते हैं, क्योंकि अगर इंद्र की जगह कोई और व्यक्ति हो, असुर हो, तो वो तो और ज्यादा मतलब कोई वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना अपराध करेगा वो इंद्र के स्थान पर। इसलिए भी भगवान जो है उसको सहन कर लेते हैं या कई मामलों में क्षमा कर देते हैं, और कई बार फिर इंद्र को दंड देते हैं, थोड़ा दंड देते हैं या ज्यादा दंड देते हैं तो करते हैं। इंद्र ने जो है पूरे ब्रजवासियों को मार डालने के लिए, सब गमों को मार डालने के लिए वर्षा कराई, है कि नहीं। तो फिर बाद में इंद्र ने क्षमा याचना की भगवान से, तो क्षमा कर दिया। लेकिन जो असुर हैं उनमें अंतर ये होता है, देवता असुर में अंतर यही होता है कि असुर जो ना झुकेंगे नहीं। उनका क्या सिद्धांत है, सर कटा सकते हैं पर लेकिन सर झुका सकते नहीं। वो सर कटा लेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे, है कि नहीं। तो ये समस्या होती है असुरों के साथ में। धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी जो है ना अवसर मिला, काफी अवसर मिला कि क्षमा मांग लें, लेकिन नहीं, वो क्षमा नहीं मांगने के लिए तैयार है। हाँ, परमानंद केशव प्रभु का प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत के अनुसार धृतराष्ट्र को विदुर जी ले गए और रातों रात जो है ना छिप करके विदुर जी को ले गए, विदुर जी ले गए धृतराष्ट्र को। लेकिन यहाँ पर ये बताएंगे कि धृतराष्ट्र ने स्वयं जो है प्रजाजनों से भी अनुमति ली और युधिष्ठिर महाराज से अनुमति ली और वनवास की दीक्षा ली और मतलब बहुत कुछ बातें हुई। धृतराष्ट्र जब वन में गए तो इसको कैसे समझें। जो मैंने बताई घटना ये महाभारत की है घटना, और जो आप बता रहे हैं वो श्रीमद् भागवत की घटना है। तो महाभारत की घटनाओं में और श्रीमद् भागवत की घटनाओं में कई बार जो है अंतर होता है। इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए जीव गोस्वामी बताते हैं कि कल्प भेद के कारण ये अंतर होता है। श्रीमद् भागवत में जो बताई गई घटनाएं, ये 5,000 साल पहले जो हुआ था वो घटनाएं हैं, और महाभारत में जो घटनाएं बताई गई हैं वो कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो और दूसरे कल्पों में हुई हैं। तो इस तरह से जो है अंतर होता है। इसके साथ साथ कृष्ण का चरित्र भी जो है ना प्रत्येक पुराण में मिलता है, और कई बार तो ऐसी ऐसी अंतर मिलते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ तो फिर वैसा कैसे हुआ, तो बहुत जो ना अंतर है। राम का चरित्र भी जो ना सब पुराणों में मिलता है और सब में कुछ ना कुछ अंतर है, और कई बार ऐसा अंतर है कि बिल्कुल परस्पर विरोधी बातें होती हैं। अगर आप इसको मानोगे तो फिर वो हो ही नहीं सकता, वैसा नहीं हो सकता, है ना। तो इसका जो है ना मतलब इसमें कुछ संदेह करने की बात नहीं है, क्योंकि कल्प भेद से मैंने बताया कल्प भेद, प्रत्येक कल्प में, कल्प समझते क्या होता है, ब्रह्मा का एक दिन। तो ब्रह्मा के एक दिन में मतलब हर बार कृष्ण का अवतार होता है, और जब कृष्ण का अवतार होता है तो तरह तरह से मतलब लीलाएं होती हैं, आप समझे ना, तो इसलिए उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि नियत कर्म को त्याग करके कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में लग जाए तो फिर उसमें अपराध नहीं है। हाँ, उसमें अपराध नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है कि अपने सुधर्म को त्याग करके, तो कोई व्यक्ति अगर अपने सुधर्म का त्याग करके अगर भगवान के चरण कमलों का भजन करे, है ना, और उससे अगर गिर भी जाए, कृष्ण के भजन से अगर गिर भी जाए, है? तो भी उसका क्या नुकसान है? को वार्थ आप तो अभजताम सुधर्मता है। लेकिन अगर जो है ना भगवान के चरणों का भजन ना करे तो सुधर्म का पालन करने से भी क्या लाभ? मतलब यही है कि जो नियत कर्म है या सुधर्म है, इनका पालन करने का जो फल है वो क्या है? कि कृष्ण के चरण कमलों में श्रद्धा पैदा हो, है ना। तो सब कुछ जो है मतलब इसीलिए होता है कि कृष्ण की शरण ली जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को त्याग करके एक मेरी शरण में आओ। अहम तो असर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम शोक मत करो, है ना। तो पाप का मतलब यही है कि आप अपने धर्म का त्याग कर रहे हैं। तो एक पागलपन अगर किसी के अंदर आ जाए इस प्रकार का कि मुझे कृष्ण से मिलना है, कृष्ण का दर्शन करना है, है ना, तो फिर उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल पागल हो गए कृष्ण के लिए, है? तो जवान पत्नी और बूढ़ी माँ और उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, लेकिन संन्यास ले लिया और जो है ना भाग गए घर छोड़ कर के, रात में जो है ना आधी रात में वो अपनी सोती हुई पत्नी और माँ को छोड़ करके चले गए, है ना। तो ये दिखलाया उन्होंने। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फिर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए छोड़ देता है अपनी माँ को, पत्नी को, है, इंद्रिय तृप्ति करता है, तो फिर उसको तो पाप लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कृष्ण की प्राप्ति के लिए अगर वो पूरी दुनिया को भी छोड़ दे, है ना, तो कोई भी उसको पाप नहीं लग सकता है, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति घर छोड़ करके आ जाए, यहाँ मंदिर में रहे, है ना, और फिर मंदिर के नियमों का पालन ना करे और इंद्रिय तृप्ति करे, तो फिर तो वो जो ना मिथ्याचारी है कि नहीं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए कि फिर जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, है ना। अगर इधर पूरी तरह से अगर लग जाए कोई व्यक्ति कृष्ण के चरणों में, अपने मन को पूरी तरह से लगा ले, तो फिर उसके लिए फिर कोई भी कर्तव्य नहीं होता है, है ना। और भगवान भी कहते हैं योग क्षेम महाम्यम, उसके योग और क्षेम मैं पूरा करूंगा, उसका योग क्षेम पूरा करूंगा, तो उसके जितने भी कर्तव्य हैं वो सब मैं पूरा करूंगा। तो फिर भगवान क्यों नहीं पालन करेंगे, है? उसके कर्तव्य का जो उस पर आश्रित है, तो भगवान क्यों नहीं उनकी देखभाल करेंगे, है ना। तो इनका प्रश्न है कि प्रबोधनी पुस्तक में लिखा है कि भगवान की शरण लेकर के तुच्छ स्त्रियां भी परम गति प्राप्त कर सकती हैं, तो क्या स्त्रियां तुच्छ होती हैं? हाँ, स्त्रियों में ये माना गया है कि कुछ ऐसे दुष्कर्म हैं जिनके कारण उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने में बाधाएं होती हैं, जबकि पुरुष स्वतंत्र होते हैं। तो भगवान की शरण लेकर कोई भी जीव परम गति प्राप्त कर सकता है, तो फिर ब्राह्मण और क्षत्रियों को परम गति मिले तो क्या कहना? तो स्त्रियों को पापयोनि नहीं कहा जाता है, परंतु पुरुषों की तुलना में उनके पास कम स्वतंत्रता तथा कार्य करने की क्षमता भी कम होती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कई प्रकार की असुविधाएं होती हैं कि वे जो है साधु संग नहीं कर सकती हैं हमेशा, वो जो है ना जैसे पुरुषों के पास स्वतंत्रता होती है उतनी स्वतंत्रता उनके पास नहीं है, उतनी सुविधाएं उनके पास नहीं है, तो इस दृष्टि जो ना मतलब स्त्रियों को जो है मतलब ये माना गया है कि उनके पास इतने अवसर नहीं है, है ना। लेकिन फिर भी भगवान की शरण ले सकती है और भगवान किसी भी स्त्री को शरण दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा है कि अगर आश्रय ले कोई स्त्री भी और जो है ना पाप योनि। इनका प्रश्न की चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में लिखा है कि कृष्ण का आकर्षण स्त्रियों के प्रति ज्यादा होता है और ज्यादा ज्यादा कृपा करते हैं स्त्रियों के प्रति, नहीं वो दिखा देना क्या लिखा है ऐसा मतलब नहीं है। भगवान तो कहते हैं समोहम सर्व भूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, भगवान के लिए स्त्री और पुरुष के में कोई अंतर नहीं है। ये भजन थी तो माम भक्तिया मैं ते तेसु चापे हम, जो भक्ति से मेरा भजन करे हैं तो जो ना मैं उनका हूं वे मेरे हैं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई स्त्री हो या जो ना कोई पुरुष हो, भगवान के लिए इन चीजों का कोई अंतर नहीं है। ये तो स्त्री है पुरुष, ये तो भौतिक शरीर में लिपटा हुआ जीव है, ठीक है ना। तो ये तो जो है भगवान अवसर देते हैं किसी को भी, जो भी कृष्ण के चरणों में आना चाहता है तो कृष्ण उसको अवसर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर असहाय है कोई भी जीव, अगर असहाय है, दीन है, तो भगवान को दीन बंधु कहा गया है ना। तो स्त्री भी जो है ना, अगर दीनता से असहाय में, असहाय अवस्था में अगर भगवान को याद करती है तो भगवान उसको सहारा देंगे। तो स्त्रियों में जो है कई मामलों में ऐसे बंधन होते हैं और मजबूरियां होती हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं पुरुषों की जगह। तो भगवान स्वाभाविक है कि वो सहारा देंगे और कृपा करेंगे, है ना। लेकिन एक बालक भी हो सकता है, एक बच्चा भी जो है ना, जैसे ध्रुव महाराज है, तो उन पर भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं, है ना। तो स्त्री है, बालक है, वृद्ध है कि नहीं, तो इन पर भगवान दया करते हैं। यहां तक कि पशु पक्षियों के ऊपर भी दया करते हैं भगवान, क्यों, गजेंद्र एक हाथी था है कि नहीं, तो वो भी अपनी मजबूरी में भगवान को याद कर रहा है, तो भगवान उसकी उस पर भी कृपा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान तो जो है ना सबके पिता है, पिता हम भगवान कहते हैं ना कि सर्व जगतो माता धाता है पितामह, है ना। पिता हमस्त जगतो माता धाता पितामह, इस जगत के पिता मैं हूं, मैं हूं इस जगत का। तो भगवान जब पिता है तो वो जो है स्वाभाविक है उनमें दया। लेकिन जब दीन हो कोई व्यक्ति, दीनदा से भगवान को याद करे। लेकिन हाँ, पुरुषों में जो है ज्यादा अभिमान देखा जाता है, क्योंकि उनके पास शक्तियां होती हैं, कई प्रकार के साधन होते हैं, है ना। तो धन का बल होता है और जो है अपने शरीर का बल होता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो फिर भगवान दूर हो जाते हैं उससे, है कि नहीं। लेकिन फिर स्त्रियों में भी कई प्रकार की स्त्रियां होती हैं, कोई बहुत जो है ना दुष्ट स्वभाव की होती हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान ने दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति का विभाजन किया है ना। तो वो स्त्री में भी हो सकता है आसुरी भाव, और पुरुषों में भी आसुरी भाव हो सकता है। दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव का भगवान ने वर्णन किया है और कहा दैवी संपत्ति में मोक्षाय निबंध आसुरी मता, जो दैवी संपत्ति है वो बंधनकारी है, नहीं दैवी संपत्ति में मोक्ष है। दैवी संपत्ति बंधन से छुड़ाती है और आसुरी संपत्ति बंधनकारी होती है ना। तो द्रौपदी हैं और पांच पांडव हैं, भगवान बराबर कृपा करते हैं, कोई अंतर नहीं है ना। अर्जुन जब कष्ट में होते हैं तो भगवान अर्जुन की भी सहायता करते हैं, द्रौपदी कष्ट में होती है तो भगवान द्रौपदी की भी सहायता करते हैं, है ना। भगवान जो है निर्बल के जो है बल है, निर्धन के धन। नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन वित्त, जिसको किसी चीज का घमंड नहीं है कि मेरे पास धन है, मेरे पास बल है, तो वो भगवान को जो प्राप्त कर सकता है। और कोई प्रश्न किसी का, इनका प्रश्न की चैतन्य शिक्षा में मिला है, में लिखा है कि राधा की संपत्ति कृष्ण है, तो कृष्ण राधा की संपत्ति क्यों है। राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति है, प्लेजर पोटेंसी, भगवान को जो है आनंद देने के ही लिए राधा रानी है। तो राधा रानी चूंकि भगवान को आनंद देने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं, कृष्ण के आनंद में है, इसलिए भगवान कृष्ण भी समर्पित हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तान तथा भजामि हम, जो जिस प्रकार से मेरे शरण में आते हैं मैं उनका उसी प्रकार से भजन करता हूँ, है कि नहीं। तो राधा रानी में जो भाव है, जिस प्रकार से, वो राधा रानी के पास ही है और किसी के पास नहीं है। राधा रानी के भाव को समझने के भगवान स्वयं भी चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करते हैं, है ना। तो भगवान भी नहीं समझ सकते राधा रानी के भाव को, इसलिए उन्हें खुद चैतन्य महाप्रभु बनना पड़ता है, राधा रानी के भाव को जानने के लिए, देखने के लिए, है ना। तो आप सोचिए कि राधा रानी का कैसा ऊंचा भाव है, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा के, श्री श्री गोंडताय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय हो जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।